Priya Madam Chairman, Bhai or Bhino, Namo Buddhai, Jai Bheem! So, we're trying to see the Buddha Dhamma in terms of science.
तो हम बौद्ध धम्मो को अब देखने की कोशिश करेंगे शांति में.
We're trying to understand why Baba Sahib chose the Buddha Dhamma.
हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों बाबा साहब ने बौद्ध धम्म को चुना.
And we're using the idea of evolution as a way of understanding.
और हम उत्क्रांति की कल्पना से इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं.
And we've seen that we can see human beings as the end of a process of lower evolution.
तो हम यह देखने की हमने यह देखने की कोशिश की कि जो इंसान है वह निम्न उत्क्रांति की समाप्ति कैसे है.
It's a process of the evolution of consciousness.
हम इसे कह सकते हैं कि यह चेतना की उत्क्रांति है.
We start with stones.
तो हमने पत्थरों से इसकी शुरुआत की.
As far as we know, stones have no consciousness.
जहां तक हमें पता है पत्थरों में चेतना नहीं होती.
And then life emerges.
और फिर जो जीवन वहां से उत्पन्न हुआ.
Plants.
वनस्पति.
They're a little bit sensitive to the world around them.
तो उनके इर्द गिर्द जो दुनिया या विश्व होता है उसके प्रति वह संवेदनशील होते हैं.
You know the sunflower?
आपको सूर्यफूल पता है?
You know the sunflower follows the sun.
तो सूर्यफूल सूर्य को उसका अनुकरण करता है.
In a sense you could say it senses the sun.
एक दृष्टिकोण से हम ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य के प्रति वह फूल संवेदनशील है.
Then consciousness becomes more complicated, complex.
उसके बाद में जो चेतना है वह ज्यादा क्लिष्ट होती गई.
You have animals, other creatures that are capable of forming a very rich picture of the world.
तो ऐसे एनिमल एंड
एनिमल्स. हाँ,
तो जो प्राणी है उन्होंने अपने विश्व का जो चित्र है वो अधिक क्लिष्ट बनाया ज्यादा विश्व को जानकर.
And then you see something like the bandar, the monkeys. Well, they're very intelligent, they're very sensitive.
तो बंदर जो होते हैं वो बहुत संवेदनशील और बुद्धिमान होते हैं.
And then you get human beings.
और फिर हम इंसान.
And human beings not only have sophisticated ability to sense.
तो इंसान जो है उनमें बहुत ही अच्छी संवेदनशीलता की क्षमता होती है.
They are self-aware.
वे केवल उतना ही नहीं वे स्व के प्रति जागरूक रह सकते हैं.
At least they're capable of being self-aware.
कम से कम उनमें यह काबिलियत है कि वो अपने आप के बारे में जागरूक हो सकते हैं.
But we saw yesterday that much of the time human beings don't behave very differently from monkeys.
लेकिन yeah? कल हमने देखा कि बहुत बार जो इंसान है वह बंदरों से अलग नहीं रहते.
A lot of the time we don't really use our self-awareness.
बहुत बार हम अपने स्व जागृति का प्रयास हम करते नहीं है.
We're just a little bit aware of ourselves.
या हम अपने बारे में थोड़े से जागरूक होते हैं.
Even here, maybe.
और यहाँ पे भी.
Maybe quite a lot of the time we're not really aware of ourselves.
और बहुत बार हम अपने स्वयं के प्रति भी जागरूक नहीं रहते हैं.
You are here.
कि आप लोग यहां हैं.
I am here.
मैं यहां हूं.
I am here at this moment.
मैं इस क्षण में यहां मौजूद हूं.
Just think, this moment, it will never come again.
अब सोचिए कि यह जो पल है यह जो क्षण है यह दोबारा नहीं आएगा.
Already it's gone.
जैसे ही मैंने बोला है चला गया.
But for a moment we're aware of this moment.
लेकिन जिस क्षण में हम इस क्षण के बारे में जागरूक होते हैं.
This is what it is to be fully a human being.
वही अपने आप को पूरा मानव बनाता है.
We're aware of ourselves here.
हम अपने आप के बारे में जागरूक रहते हैं कि मैं यहां अभी मौजूद हूं.
We saw we're aware of our bodies.
हम अपने शरीर के बारे में जागरूक होते हैं.
We're aware of our feelings.
हमारे भावनाओं के बारे में हम जागरूक होते हैं.
You're right now, you've got feelings about this situation.
और इस परिस्थिति के बारे में आप जागरूक है.
Maybe you're interested.
हो सकता है आपका इसमें इंटरेस्ट हो, रुचि हो.
Maybe you're bored.
हो सकता है आप बोर हो सकते हैं.
Maybe something's happened this morning that has upset you.
हो सकता है आज की सुबह जो कुछ हुआ उससे आप निराश हो सकते हैं.
Maybe something's happened today that makes you very happy.
या ऐसा भी हो सकता है कि आज सुबह जो हुआ उससे आप काफी खुश भी रह सकते हैं.
What are you feeling right now?
कैसी आपकी भावनाएं हैं इस वक्त?
Then, well, you've got thoughts in your mind.
और फिर हमारे मन में विचार है.
Maybe while I'm speaking, thoughts are going on in your minds.
जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, आपके मन में विचार घूम रहे हैं.
Maybe you're remembering things you learnt in college.
हो सकता है आपने जो कॉलेजेस में सीखा है उसको आप याद कर रहे हो.
Maybe doubts are coming in your mind.
अब शंकाएं आपके मन में आ रही हो.
Maybe you're thinking to yourself, well, yes, but what about this? What about that?
या आप ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ यह तो ठीक है लेकिन इसके बारे में क्या, इसके बारे में क्या.
Or maybe you're thinking about something else altogether.
या ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ छोड़ के आप कुछ और ही सोच रहे हो.
Maybe you're only half listening with one ear.
हो सकता है आप केवल एक ही कान से सुन रहे हो.
And the rest of your mind is thinking about something else.
और आपका दूसरा जो मन है वो किसी और चीज के बारे में सोच रहा हो.
Well, what is going on?
क्या हो रहा है?
Do you know what is going on in you?
क्या आपको पता है कि आपके अंदर क्या हो रहा है?
If you don't really know, then in a way you're not properly human.
तो अगर आप इसके बारे में नहीं जानते कि क्या सही मायने में हो रहा है तो हम फिर इंसान नहीं है.
Please don't take offense, brothers and sisters.
अब भाई और बहनों इसको अपमान मत समझिए.
If you're not really aware, you're just a little bit better than a monkey.
तो अगर आप ज्यादा जागरूक नहीं है तो आप थोड़े से अच्छे उस बंदर के जैसे हो सकते हैं.
मैं भी
और मैं भी
इट्स ट्रू
और ये सही है.
सो वेल वी हैव सीन दैट द लोअर इवोल्यूशन ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस.
तो यह जो निम्न उत्क्रांति है इसने हमें स्व जागृति तक लाके छोड़ा.
You could say that zero is like the stone or some water.
आप ऐसा कह सकते हैं कि यह जो जीरो यहाँ है यह पत्थर के जैसा है जिसमें चेतना नहीं है.
One is where sense consciousness begins to emerge.
और एक जो है जहाँ से आपकी संवेदनशीलताओं की चेतना जागी.
Two is where self-consciousness emerges.
और ये दो जो है यहाँ पे आपकी स्व चेतना जागी.
So the question is that I left with you with yesterday, what comes afterwards?
तो कल मैंने इस सवाल में या इस सवाल तक आपको छोड़ा कि इसके बाद क्या आता है.
What is three?
अब तीन नंबर क्या है.
What is infinity?
और वो जो असीम है, जो अनंत है, वह क्या है?
You're familiar with that sign, which means infinity.
ये सिंबल पता है आपको जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं?
So, what are they? What are three? What is infinity?
अब तीन और अनंत क्या है?
Well, you remember yesterday I was suggesting that evolution from two onwards is not to do with the species.
अब मैंने कल आपको इसका भी विश्लेषण किया था कि ये दो नंबर से ऊपर की जो उत्क्रांति है यह प्राणियों से, स्पीशीज मीन्स एनिमल्स
स्पीशीज,
तो उन प्राणी समूहों से उसका संबंध नहीं है.
इट्स नॉट द फैमिली दैट इवॉल्व्स.
तो हाँ, यह एक समूह नहीं है जो उत्क्रांतित होता है.
इट्स द इंडिविजुअल.
यह वैयक्तिक उत्क्रांति है.
द फर्दर इवोल्यूशन is an individual evolution.
इसके बाद की जो उत्क्रांति होगी वह वैयक्तिक उत्क्रांति होगी.
You could say that each of us is a species by ourselves.
ऐसा हम कह सकते हैं कि हम में से हर एक आदमी एक वैयक्तिक समूह है, एक अपने आप में समूह है.
Now there's another difference between the higher evolution and the lower evolution.
अब इसमें एक और महत्वपूर्ण अंतर है निम्न उत्क्रांति में और उच्च उत्क्रांति में.
You could say that the lower evolution is blind.
हम ऐसा कह सकते हैं कि जो निम्न उत्क्रांति है वह अंधी है.
The animal doesn't think, oh, I will become something more.
तो ऐसा हम कह सकते हैं कि जो निम्न उत्क्रांति है वह अंधी है.
The amoeba doesn't think, oh, I think I'll become a fish.
अब अमीबा जो है यह ऐसा नहीं सोचता कि मैं मछली बनूंगा.
It's just blind processes and a fish arises.
ऐसा हम कह सकते हैं कि यह अंधी प्रक्रिया है जो होते रहती है.
Tiny changes over many, many generations.
यानी क्या कह सकते कि छोटे छोटे बदलाव पीढ़ी दर पीढ़ी होते हैं जो हम समझ नहीं पाते.
If you looked at that whole process, you wouldn't be able to say where exactly the amoeba became the fish.
तो अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को गहराई से देखेंगे तो आप यह समझ नहीं पाएंगे कि कहां से अमीबा शुरुआत हुआ और कहां यह मछली बना.
So it's blind.
तो यह एक अंधी प्रक्रिया है.
There's no will, there's no desire, there's no intention.
तो वहां पे कोई हमारी ऐसी इच्छा नहीं है, हमारी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसके बारे में हमारी चाहत है.
But further evolution is conscious.
लेकिन इससे आगे की जो उत्क्रांति है वह सचेतन है.
We have to decide to become something more.
हमें सोचना पड़ता है, हम यह निर्णय लेते हैं कि मैं इससे अधिक कुछ बनूंगा.
It's in our hands.
यह हमारे हाथ में है.
It's not just in the hands of blind forces.
यह अंधी शक्तियां या अंधी जो प्रक्रिया है इसमें इसका संबंध नहीं है.
Now, in order to explain this further, I need to give you a bit more background.
तो अगर इसको अधिक आगे बताने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि बतानी होगी.
You know that science discovers, reveals the laws of nature.
अब आपको पता है कि विज्ञान ने निसर्ग के जो नियम है उनको खोजा.
Well, yesterday or the day before, I talked about Isaac Newton.
मैंने अभी न्यूटन की बात की कल या परसों.
Well, Isaac Newton, he had to think about why that apple fell on his head.
तो अभी न्यूटन को यह सोचना पड़ा कि यह जो सेब है यह मेरे सर पे आके क्यों गिरा.
So he thought, well, what are the laws that made that happen?
तो उन्होंने यह सोचा कि ऐसे कौन से नियम हैं जिससे यह प्रक्रिया हुई.
He discovered the laws of gravity.
उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा.
He discovered the laws of thermodynamics.
और उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स का नियम ढूंढा. क्या कहते
Thermodynamics near. He discovered the way in which things are attracted to each other, things are repelled from each other, and so on.
तो हम यह सोचते हैं कि कहाँ पे ऊर्जा आती है और कहाँ पे वह जाती है.
Because everything is works in accordance with patterns.
क्योंकि हर चीज जो है वह किसी प्रकार से होती है.
Everything is a base, if you like, laws.
और हर चीज इस बात पर निर्भर करती है मान लो किसी नियमों के साथ.
Of course, when we say obey, that's a metaphor, it's not the literal truth.
अब हम ऐसा कह सकते हैं एक उदाहरण के लिए कि यह इन नियमों से चलता है, यह ऐसा शाब्दिक तथ्य ऐसा नहीं है.
If I hold this pen,
अगर मैंने इस पेन को पकड़ा,
and I drop it,
अगर मैं इसे छोड़ देता हूं,
well, there are laws that determine what will happen.
तो कुछ नियम है जो यह निर्णय करते हैं कि इसके बाद क्या होगा.
It's not that sometimes it goes upwards.
अब ऐसा नहीं होता कि कभी यह ऊपर जाता है.
Sometimes it just stands in the middle of the air.
कभी कभी यह बस यहीं रुक जाएगा.
Sometimes it goes sideways.
कभी कभी यह इधर जाएगा.
Sometimes it just disappears.
और कभी कभी गायब हो जाएगा.
No, it's not like that.
अब ऐसा नहीं है.
You can guarantee what will happen.
आप इसकी गारंटी दे सकते हैं कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो क्या होगा.
बरोबर. You think you know what's going to happen, do you?
आपको पता है शायद कि क्या होने वाला है.
Yeah, what's going to happen if I drop it?
क्या होगा अगर मैं इसे छोड़ूंगा.
नीचे.
No.
ऊपर. ऊपर.
Subhuti can send it up.
What is going to happen?
क्या होगा.
Are you completely sure? एकदम जरूर. बिल्कुल. I'm not convinced. I'm not convinced.
मुझे नहीं लगता ये नीचे आएगा.
Okay, we'll try a scientific experiment.
तो ठीक है हम ये प्रात्यक्षिक करेंगे.
We don't know what's going to happen.
अब हमें पता नहीं क्या होगा.
एक दो तीन वाह. So this gentleman here, he won the prize. He got it right. But we all were able to say it will go down.
तो हम सब लोग यह भली भांति जानते हैं कि ये नीचे ही आएगा.
Because we know the law of gravity.
क्योंकि हम जानते हैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत काम करता है.
And under those conditions, any light body will fall towards a heavy one.
और ऐसे परिस्थितियों में कोई भी जो हल्का द्रव्य है या हल्का जो पदार्थ है वह बड़े पदार्थ की ओर जाएगा, नीचे आएगा.
This is the way that the world, the universe is put together.
और इन्हीं नियमों से यह जो पूरा विश्व है ऐसा है.
There are laws that govern everything.
ऐसे कुछ नियम है जिनके द्वारा यह चलता है.
So we need to be able to see what laws are at work at every stage of the evolution.
तो हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हर स्टेज में कौन से नियम काम किए.
So let's start right at the bottom. Let's start with stone.
तो हम पत्थर से इसकी शुरुआत करते हैं.
What laws govern the stone?
कौन से नियम है जो पत्थरों के ऊपर काम करते हैं?
Well, you could say, to put it very simply, it's the laws of physics.
और हम ऐसा कह सकते हैं कि यह भौतिक शास्त्रीय नियम है.
But the stone, of course, is made of various substances. It's chemical.
अब हमें पता है कि जो पत्थर है यह विभिन्न रासायनिक द्रव्य से बने होते हैं.
I think this stone here is some sort of granite, is
granite.
It? Yeah. So it was formed in the magma of a great, right at the center of the earth.
तो यह जो पत्थर है यह ग्रेनाइट से बना है जिसे हम मैग्मा कहते हैं जो पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग में होता है.
And then it flowed up to the surface.
और फिर वो पृथ्वी के बाहर आता है.
And it cooled down. It was like soup.
यह सूप के जैसा होता है लेकिन यह जब यह ठंडा होता है तो इसकी परत बनती है.
It was like chutney. And it just solidified.
और फिर इसका घन रूप आता है.
So the laws of physics, yes, they were involved.
तो भौतिक शास्त्रीय जो नियम है यह इस उत्क्रांति के स्तर पर काम करते हैं.
But the laws of chemistry were also involved.
Chemistry के कुछ नियम.
So those are the laws that govern the way in which inorganic matter behaves.
तो इस तरीके से जो असजीविक जो द्रव्य है वह इकट्ठा आते हैं और यह घटनाएं होती है.
In Buddhism, these are referred to as Utu Niyama.
और बौद्ध धम्म में हम इसे उतु नियम कहते हैं.
You get this in the Buddha and his Dhamma. Baba Sahib talks about this when he's talking about karma.
बुद्ध और उनका धम्म यह जो बाबा साहब ने ग्रंथ लिखा इस ग्रंथ में हमें यह मिलता है इसे हम उतु नियम कहते हैं.
But then of course this inorganic matter comes together.
और इस तरीके से यह जो असजीव जो द्रव्य है वह इकट्ठा आते हैं.
And gradually you get living organisms.
और धीरे धीरे उनमें से सजीवों की उत्पत्ति हुई.
Very very simple one-celled living organism.
बहुत ही सीधा सा एक पेशीय प्राणी.
These are organisms that are organized for their survival and reproduction.
और ऐसे सजीव जो अपने आप के लिए जिंदा रहते हैं और उसकी पुनरुत्पत्ति करते हैं.
And these, of course, what laws govern these?
और यह नियमों के कारण इनकी उत्पत्ति हुई.
Well, it's the laws of biology.
अब जीव शास्त्रीय नियम क्या है?
And botany and those subjects, yeah? So, the laws of biology, like the law of photosynthesis in botany, yeah?
जैसे photosynthesis यानी सूर्य.
He's only a philosopher, he doesn't know anything.
जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं फोटोसिंथेसिस.
So the teak trees there, they're absorbing sunlight in their leaves, and the chlorophyll in the leaves is changing that into something.
तो यह जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पत्तों से सूर्य किरण लेता है और इसमें से अपने जीव बनाता है या अन्न बनाता है और वो कुछ तो भी बन जाता है.
So the whole the laws that govern the way in which the seed becomes the full tree, those are the laws of biology, of botany.
तो यह प्राणी शास्त्र के या जीव शास्त्र के कुछ नियम है जिन बीजों से वह पेड़ बनता है.
And in Buddhist philosophy, this is known as bija niyama.
और बौद्ध दर्शन में इन नियमों को बीज नियम कहते हैं.
So, well, we can see this even in our own bodies.
और यह बीज नियम जो है हम अपने शरीर में देख सकते हैं.
I fell to the ground.
मैं अगर ऊपर चला गया तो.
First of all, I jumped up, then I fell down.
तो पहले यह ऊपर उछले, बाद में नीचे आए.
That's the law of gravity is operating on my body.
तो मेरे शरीर में यह गुरुत्वाकर्षीय जो नियम है वह काम कर रहा है.
If the law of my body didn't obey the law of gravity, I'd go through the ceiling.
और अगर यह गुरुत्वाकर्षण नियम इसमें काम नहीं करेगा तो मैं सीधा छत पे चला जाऊंगा.
So yes, my body is subject to all the utu niyama laws.
तो मेरा जो शरीर है यह इन उतु नियमों को उनका पालन करता है.
And there are chemical processes, huh?
और मेरे शरीर में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही है.
But my body is also a living organism.
और मेरा शरीर भी एक सजीव है.
In fact, actually, there are quite a number of living organisms in my body.
अब एक तथ्य यह भी है कि मेरे शरीर में ही बहुत सारे जिंदा प्राणी है.
There are various
elephants, tigers.
Don't listen to him. Bacteria in the body, viruses, huh?
तो ऐसे विषाणु या जीवाणु मेरे शरीर में है.
There's intestinal flora.
और जो अपना जो अतड़िया होती है उसमें द्रव्य होता है उसको पचाने के लिए.
Part of how I digest is because there are little organisms that do the digesting for me.
कुछ बैक्टीरिया या जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारे अन्न को पचाने के लिए मदद करते हैं.
So here I am.
तो यहाँ मैं हूँ.
A whole body of biological processes.
तो पूरा यह जो शरीर है यह जीव शास्त्रीय एक प्रक्रिया है.
Well, we begin to be sensitive.
लेकिन हम संवेदनशील होने की इसके लिए कोशिश करते हैं.
We begin to be aware of the world around us.
और हमारे इर्द गिर्द जो विश्व है जो दुनिया है उसके बारे में हम संवेदनशील होते हैं.
We can see, well, this is something to eat, this is something not to eat.
तो हम यह सोचते हैं कि यह खाने के लिए है यह खाने के लिए नहीं है.
We can see, for instance, which season it is.
Which
season, मौसम.
हाँ हाँ. जो हम अलग अलग मौसम में भी अनुभव करते हैं.
So for instance, in England, in the winter, many animals sleep through the winter.
अब इंग्लैंड में जब बहुत सर्दी होती है उन सर्दियों में बहुत सारे प्राणी जो होते हैं वह सोते हैं.
You know the little squirrels you have here.
यह गिलहरी पता है आपको यहाँ की.
We have one sort of squirrel that sleeps for 3 months of the year.
हमारे देश में एक प्रकार की जाति की गिलहरी खारुताई होती है जो 3 महीना सोती है.
It knows that winter is there, it's cold. Well, it doesn't know it, but it senses that it's cold, it's time to hibernate.
तो उसे यह पता चल जाता है या वैसा नहीं पता चलता लेकिन वह संवेदनशील होती है. वह जानती है वह चाहती है कि यह समय है मेरे सो जाने का.
So our bodies evolve to the point at which we have senses.
तो एक समय आता है कि हमारे जो इंद्रिय है वह संवेदनशील होते हैं.
And we have instincts.
और हम में उत्तेजनाएं हैं.
For instance, in England there are birds that come every springtime.
तो इंग्लैंड में कुछ पंछी है जो
स्प्रिंग यानी
वसंत ऋतु जो है उस वसंत ऋतु में आते हैं.
When the sun begins to come back, these birds come.
और जब सूरज वापस आता है तो यह पंछी भी वापस लौट के आ जाते हैं.
They come from South Africa.
वो साउथ अफ्रीका से आते हैं.
It's thousands and thousands of miles.
यह हजारों हजारों मील दूर है.
But every year they fly down to South Africa in the winter, back in the spring.
तो हमेशा ही वो जो सर्दी होती है, सर्दियों में वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और जब बसंत ऋतु आता है तब वो वापस आ जाते हैं.
They don't have a map.
अब उनके पास नक्शा नहीं है.
They don't have a GPS system.
अब उनके पास GPS सिस्टम नहीं है.
They don't have a telephone.
और उनके पास मोबाइल टेलीफोन कुछ नहीं है.
Oh, I'm lost. I don't know where I am. Even the babies fly by themselves where they've never been before.
तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भले ही उसके पहले कभी नहीं गए हो लेकिन वो भी वहाँ चले जाते हैं.
In a way, we have to say they don't know where they're going.
अब एक दृष्टिकोण से हम ऐसा कह सकते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं.
But instinct takes them there.
लेकिन उनकी जो उत्तेजना है, जो प्रतिसाद है, वो उन्हें वहाँ ले जाता है.
I live out in the countryside.
अब मैं अपने यानी शहरों के बाहर रहता हूँ.
And there's a stream running through my property.
और मेरे घर के पास से एक झरना जाता है.
And in the spring you see an eel.
और वहाँ पे एक सांप के जैसी जो मछली होती है जिसे ईल कहते हैं वो दिखती है.
सांप नहीं, फिश.
Like
सांप. I think you have them here, yeah? Yeah. And they spend the winter months the other side of the Atlantic Ocean in the Caribbean.
तो वो जो Atlantic महासागर है उसके उस और
which मौसम they spend there?
Winter. The winter, yeah.
सर्दियों में वो Atlantic सागर के उस और होते हैं.
Then every spring they come back.
और वसंत ऋतु में वो भी वापस आते हैं.
Thousands of miles.
हजारों मीलों की यात्रा करके.
They find the river down which they came.
और वो वही नदी को ढूंढ लेते हैं जिस नदी से वो आए.
They find the stream that comes into that river.
और वो जो झरना जिस झरने से वो उस नदी में आए उस झरने को भी वो ढूंढ लेते हैं.
They go right up into the mountain.
वो पूरे यानी ऊपर पहाड़ तक उन पर्वतों तक चले जाते हैं.
And there they breed.
और वहां पे फिर उनका प्रजनन होता है.
They come to the same place as they were born.
वो वहीं पे वापस आ जाते हैं जहां उनका जन्म हुआ.
It's difficult to understand how.
अब ये बहुत मुश्किल है समझना कि कैसे ये सब हुआ.
They don't know what they're doing. They don't plan what they're doing.
अब उन्हें पता नहीं है क्या हो रहा है. वो इसकी योजना नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते.
There's no policeman there saying this way, this way, this way.
वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं होता है इधर जाओ इधर जाओ.
They just go.
वो बस जाते हैं.
So there's instinct, we call it.
तो हम उसे एक उत्तेजना कह सकते हैं जिसे इंस्टिंक्ट कहते हैं.
So there's an intelligence, but it's of an instinctual kind.
वहाँ पे बुद्धिमत्ता है, वहाँ पे होशियारी है, लेकिन वह उस उत्तेजना से भरी है.
So this is what is studied in zoology.
हम इसे प्राणी शास्त्र में पढ़ते हैं.
In animal psychology,
प्राणी मनोविज्ञान.
And in very basic psychology, human psychology.
और जो एक बुनियादी जो मनोविज्ञान है उसमें हम इसे समझते हैं.
And it's what in traditional Buddhism is known as mano niyama.
और पारंपरिक बौद्ध धर्म में इसे हम मनो नियम कहते हैं.
Here mano. Mano niyama means the mind is a mechanism.
तो मनो नियम में क्या होता है, हमारा मन एक यंत्रणा करके काम करती है.
Some of you may have studied psychology. Huh?
आप में से कुछ लोग साइकोलॉजी पढ़ रहे होंगे.
And you remember Pavlov's dogs?
और आपको Pavlov's dog पता है?
He was a Russian experimenter.
वो एक रशिया के शास्त्रज्ञ थे.
And he found that he could that if he had a dog and he offered it some food, the dog salivated.
उन्होंने यह देखा कि अगर वो किसी वक्त पर उस कुत्ते को खाना देते हैं तो उसके मुंह में पानी आता है.
The mouth begins to prepare to eat.
क्योंकि आपका जो मुंह है वह खाने के लिए अभी तैयार है.
And then every time he gave it some food, he'd ring a bell.
और जब कभी भी उनको वो खाना देते थे तो वो एक बेल बजाते थे.
So he'd ring the bell, give it some food, the dog would start salivating.
तो अगर वो बेल बजाते थे फिर खाना देते थे तब कुत्ते के मुंह में पानी आता था.
After a while, he just rang the bell.
कुछ समय के बाद उन्होंने केवल घंटी बजाई.
He didn't give it any food.
कोई खाना नहीं दिया.
But the dog started salivating.
लेकिन उस कुत्ते ने उसके कुत्ते के मुंह में पानी आया.
That was what's called a conditioned response.
उसे हम परिस्थिति का प्रतिसाद कहते हैं.
The dog associated the sound with food.
क्योंकि वह कुत्ते की जो उत्तेजना है वह उस आवाज से जुड़ी हुई है जो खाना देती है.
It's a bit like an NBY retreat.
Yeah, शायद इस NNBY शिविर की तरह.
The bell goes and you think khana and you start again. So our minds work in that way, just like a dog's too.
तो हमारा मन उस प्रकार से काम करता है जैसे उस कुत्ते का मन काम कर रहा था.
Our senses obey certain laws.
तो हमारे इंद्रिय भी कुछ नियमों को अनुकरण करते हैं.
If I shine suddenly a bright light in Maitreya Nagarjuna's face, he'll blink and look away.
अगर बहुत तेज ऐसा कोई लाइट मेरे चेहरे पे डाल दिया गया तो मैं ऐसे करूंगा.
He won't think about it.
अब मैं इसके बारे में सोचूंगा नहीं.
He won't decide to do it.
और मैं इसका निर्णय नहीं लूंगा कि मैं ऐसा चेहरा करूं या नहीं करूं.
Just do it.
मैं बस ऐसा करूंगा.
So all of this uttu bija mano is pre self conscious.
तो यह जो उतु बीज और मनो जो है यह पूर्व उत्क्रांति की चेतना है.
सो वॉट आर द लॉज दैट गवर्न सेल्फ कॉन्शियसनेस.
अब ऐसे दूसरे कौन से नियम है जो हमारी स्व चेतना को चलाते हैं.
नाउ द स्ट्रेंज थिंग इज दिस इज व्हाट वी रियली नीड टू नो.
तो यह बहुत विचित्र बात है जिसे हमें जानना है.
दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर अस.
यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमारे लिए है.
बट यू डोंट गेट टॉट इट एट स्कूल.
लेकिन यह जो ज्ञान है यह हमें शालाओं में पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता.
नोबडी टेल्स यू व्हाट लॉज गवर्न योर ओन सेल्फ कॉन्शियसनेस.
कोई भी शालाएं हमें यह बताती नहीं है कि हमारी जो चेतना है वह किस नियमों के आधार पर चलती है.
सो इफ वी नो द लॉज दैट गवर्न सेल्फ कॉन्शियसनेस वी नो द लॉज दैट गवर्न द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन.
अगर हम यह जान जाएंगे कि हमारी जो स्वचेतन जो प्रक्रिया है वह किस नियमों पे चलती है, then what we'll know?
What laws govern the next stage of evolution?
तो तब हम जानेंगे कि अगला जो उत्क्रांति का पड़ाव है उसके नियम क्या होंगे?
The laws of physics and chemistry govern the first stage of evolution.
तो उत्क्रांति की जो पहली सीढ़ी है वह फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब जो से चलती है.
The laws of biology and botany govern the next stage.
और उसके अगली जो उत्क्रांति है वह जैव या वनस्पति शास्त्र इसके द्वारा चलती है.
लॉज ऑफ जूलॉजी एंड बेसिक साइकोलॉजी गवर्न द नेक्स्ट स्टेज.
और प्राणी शास्त्र और प्राणी मनोविज्ञान या इवन मानवीय मनोविज्ञान मनो नियम से चलता है.
सो व्हाट गवर्न्स सेल्फ कॉन्शियस इवोल्यूशन.
तो जो स्व चेतना की जो उत्क्रांति है उसके नियम क्या है?
Well, this is where science as yet doesn't say much.
अब यहीं से विज्ञान जो है बहुत ज्यादा कह नहीं पाता.
But it's where Buddhism has something to say.
और लेकिन बौद्ध धर्म इसके बारे में बहुत कुछ कहता है.
It says that karma governs the next stage.
तो कर्म जो है कर्म यह अगली उत्क्रांति का पड़ाव है.
So karma, every time you hear the word karma, people think in terms of rebirth.
तो जब कभी भी कर्म इस शब्द को हम उच्चारते हैं तो लोग पुनर्जन्म के बारे में सोचना शुरू करते हैं.
For the time being, just forget about rebirth.
अब थोड़ी देर के लिए इस पुनर्जन्म को आप भूल जाइए.
Karma is working now.
कर्म अभी भी काम कर रहे हैं.
The law of karma is in operation now for every one of us.
कर्म जो है हम सब में अभी भी काम कर रहे हैं. या कार्यरत है.
The way you feel now, the way your mind is now, is the result of karma.
अब इस वक्त हमारा जैसा भी मन है वह हमने अभी तक जो कर्म किए हैं उसके कारण है.
So don't bother about the next life, huh?
अब दूसरे जीवन के बारे में आप उसकी चिंता मत कीजिए.
If there is another life, we'll find out about that later.
अगर और कुछ दूसरा जीवन होगा तो उसके बारे में हम बाद में खोजेंगे.
The main thing is, what about now?
अब महत्वपूर्ण बात है अब का क्या.
So karma determines the way in which your own mind evolves.
तो कर्म यह निर्धारित या निर्णय लेता है कि कैसे आपका मन उत्क्रांतित होता है.
Well, you're here on this event.
अब आप इस शिविर में आए.
How do you feel?
कैसे आपको लग रहा है.
अच्छा लगा. Happy, खुशी. Maybe most of you, at least, hopefully all of you.
हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग खुश हो.
Now the question is, why?
अब प्रश्न यह है क्यों.
Is it just physics?
क्या ये फिजिक्स के कारण आप खुश हुए.
Is it because of the law of physics?
क्या फिजिक्स के नियमों के कारण आप खुश हुए.
Maybe it's to do with biology.
या बायोलॉजी के कारण आप खुश हुए.
Maybe it's because of the chapatis and challah. Maybe it's to do with animal psychology.
या ये प्राणी मनोविज्ञान के कारण हम खुश है.
I don't know.
मुझे पता नहीं.
But I think it's not.
मुझे लगता है यह इसका सही कारण नहीं है.
I think to some extent how you feel now, that you're feeling happy, if you are feeling happy, it's to do with karma.
मुझे लगता है अगर अब आप किसी खुशी को महसूस कर रहे हैं इसका संबंध आपके कर्मों से है.
I think for instance quite a lot of you were here this morning.
अब आप इस सुबह आप सब लोग यहाँ जब थे मैं आपके बारे में सोच रहा था.
You were standing like that.
आप ऐसे खड़े थे.
You were sitting like that.
और आप ऐसे बैठे थे.
And you were following your breath, or doing
Maitri Bhava.
Maitri Vikas, yeah.
और आपने मैत्री विकास ध्यान किया.
And you were consciously changing your own mind.
तो आप जागरूक रहकर या सचेत होकर अपने मन को बदलने की कोशिश कर रहे थे.
It doesn't always happen. Sometimes it takes time for this to work.
और ये तुरंत होगा ऐसा भी नहीं है इसको वक्त लगता है.
But because you were making an effort to develop a skillful mental state, you feel happy.
लेकिन जब कभी भी आप थोड़े से प्रयास करते हैं कुशल कार्य करने के लिए तो आपका मन खुश होता है.
This is the law of karma.
यह कर्म नियम है.
On the other hand, if you feel very, if you get very angry, if you get very upset, if you speak harsh words, how do you feel?
और जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत गलत बोला या किसी को डांटा या मेरे में द्वेष है तो कैसे आपको महसूस होता है.
Your mind becomes dark, your mind becomes heavy.
आपका मन जो है वो भारी होता है आपको दुख होता है.
So the law of karma is talking about the way in which our own actions shape our minds.
तो हमारे यानी कर्म नियम यह हमें यह बताता है कि कैसे हमारा मन आकार लेता है.
It's really strange, isn't it? This is the most important thing for us to know, but we don't get taught it.
यह बहुत विचित्र बात है कि यह सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात है जो हम सब लोगों ने सीखनी चाहिए लेकिन हमें कहीं भी ये सिखाई नहीं जाती.
Everybody wants to be happy.
क्योंकि लेकिन हर आदमी सुखी या खुश होना चाहता है.
This is basic to us. We don't like pain, we like happiness.
यह बहुत ही बुनियादी या मूलभूत बात है कि हमें दुख अच्छा नहीं लगता और हमें सुख अच्छा लगता है.
But pain and happiness obey laws.
लेकिन पीड़ा और सुख यह कर्म नियम से ही होता है.
They're not accidental.
वो अचानक ऐसे आते नहीं है.
Oh, they're not to do with some god.
और उसका संबंध किसी ईश्वर से भी नहीं है.
If you break enough coconuts, you'll be happy.
अगर आप नारियल फोड़ेंगे तो आप खुश हो जाएंगे.
You could break all the coconuts in Kerala and you wouldn't be happy.
केरला के सारे नारियल अगर आप फोड़ देंगे फिर भी आपको सुख नहीं मिलेगा.
You could add all those in Goa and Karnataka and the Konkan.
अब कोंकण के गोवा के और कर्नाटक के भी नारियल वहां मिला दीजिए.
And however many you offered, you wouldn't necessarily be happy.
کتنے بھی آپ ایسے ناریل اس میں گنتے جائیں گے لیکن ضروری نہیں آپ ویسے خوش ہوں گے.
There could be a Mount Everest of coconuts and that won't bring happiness.
تو ناریل کا ماؤنٹ ایوریسٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کو خوشی نہیں مل سکتی.
You could be burning so much, so many agarbatti that planes couldn't take off in the fog.
تو کتنی بھی اگربتی آپ جلا لیجئے گرتا ہوا جو ویمان ہے وہ اٹھے گا نہیں.
And you still wouldn't be happy.
اور پھر بھی آپ کو سکھ نہیں ملے گا.
But you for one moment say, may he be well, may he be happy, may he progress.
لیکن ایک شن کے لیے بھی آپ اگر ایسا کہتے کہ وہ سوستھ رہے وہ اچھا رہے
that will bring some happiness to you.
اور یہ آپ کو کچھ سکھ دیتا ہے خوشی دیتی ہے.
This Buddhism is known for 2500 years.
اب بودھ دھمم 2500 سالوں سے ہم لوگ جانتے ہیں.
Just very recently some economists and psychologists have become interested in what makes people happy.
ابھی ابھی کچھ ارتھ شاسترگیہ اور اکنامسٹ ہیں
سائیکولوجی
منوویگیانک اس کا سنشودھن کر رہے کہ ہمیں خوشی کس سے ملتی ہے.
It's really strange, isn't it? It's the most basic question for us human beings.
یہ بہت ہی وچتر بات ہے. یہ بہت ہی بنیادی اور مولبھوت سوال ہمارے لیے ہے.
We know all about gravity, but we don't know about our own happiness.
ہم کو گروتواکرشن یا ان سب نیموں کے بارے میں پتا ہے لیکن اپنے سکھ کے بارے میں خوشی کے بارے میں ہی ہمیں پتا نہیں ہے.
But there was an important Nobel Prize winner called Daniel Kahneman.
ایک بہت ہی بڑے ویگیانک ہے جنہوں نے نوبل پرائز جیتا ہے ڈینیل
کانمن.
And
he was actually a psychologist, but he became interested in economics.
وہ منوویگیانک تھے لیکن ان کا انٹرسٹ اکنامک میں یا ارتھ شاستر میں ہوا.
And he began the study of what makes human beings happy.
اور انہوں نے اس کی پڑھائی شروع کی کہ ہمیں خوشی کس چیز سے ہوتی ہے.
You know that when Baba Sahib was in London, he studied at the London School of Economics.
آپ سب لوگوں کو پتا ہوگا جب بابا صاحب لندن میں تھے تو وہ لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھ رہے تھے.
So some of the professors there have also been researching what makes people happy.
تو تب بھی وہاں کچھ پروفیسرز تھے وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے تھے کہ ہمیں سب سے ادھک خوشی کس سے ہوتی ہے.
What they find, they don't call it karma, but what they find is just like karma.
اب جو کچھ بھی ان کی کھوج تھی یا حاصلیت تھی اس کو انہوں نے کرم نہیں کہا لیکن لگ بھگ وہ کرم کا ہی دوتک تھا.
What they find is that, well, first of all, people need a full belly.
کیا لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو they need belly.
No, they need a full belly. They need food in their bellies.
سب سے پہلے لوگوں کو کھانا چاہیے.
They don't need a fat belly, they just need proper food, proper nourishment.
اب ان کو پیٹی کی ضرورت نہیں ہے, ان کو کھانا چاہیے.
They need decent work.
اچھا روزگار یا اچھا کام ان کو چاہیے.
They need a good community, family and friends.
اچھا سماج, اچھا پریوار انہیں چاہیے.
After that, more wealth doesn't really make you much happier.
اب اس کے بعد کتنا بھی پیسہ آپ کے پاس ہو وہ آپ کو خوشی نہیں دیتا.
Well, you know, in America for many, many years, there's been a study of people's happiness.
امریکہ میں کئی سالوں تک لوگ خوش کیسے ہوتے اس کے اوپر سنشودھن کیا گیا.
And what that shows is that up until the 1950s, people got happier and happier as they got wealthier.
تو 1950 تک جیسے ہی لوگوں کی یعنی جو اکنامی یا کہہ سکتے کہ دھن سمپدا بڑھی وہ خوش ہوتے رہے.
But after that, the increase in happiness began to slow down.
لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ دکھ کا پرمان بڑھتا گیا.
دکھ؟ No, the increase in happiness slowed down.
Increase in happiness slowed down.
Yeah.
خوش ہونے کا پرمان کم ہوتا گیا.
At a certain point, it went into reverse.
اور ایک بندو سے وہ ساری باتیں الٹی لوٹی.
The more happy people got, the more likely, sorry, the more wealthy people got, the more likely they were to be unhappy.
جتنی زیادہ جن کے پاس دھن سمپدا رہی یا سمپتی رہی وہ سب سے دکھی پائے گئے.
So basic wealth and well-being does lead to greater happiness.
تو ایک بنیادی جو پیسہ ہے یا آپ کی ضرورتیں ہیں وہ آپ کو ایک خوشی تک لاتا ہے.
But after that basic needs are fulfilled, more wealth doesn't make you happier.
لیکن آپ کی جب بنیادی ضرورتیں بھر جاتی ہے اس کے بعد پیسہ آپ کو سکھ نہیں دیتا.
What makes you happier is having really good friends.
کیا آپ کو خوشی دیتی ہے یا سکھ دیتا ہے وہ آپ کے اچھے متر.
What makes you happy is helping other people.
کیا آپ کو سکھ دیتا ہے جو اوروں کو آپ مدد کرتے ہیں.
What makes you happy is serving some bigger cause.
بڑے کارن کے لیے اچھے ادیش کے لیے کام کرنا آپ کو سکھ دیتا ہے.
This is scientific research.
اب یہ وائگیانک سنشودھن ہے.
Yes, it's what the Buddha said 2,500 years ago, but modern science is proving it.
اب یہی بات بدھ نے 2,500 سال پہلے کہی لیکن آج کا وگیان آج اسے کھوج رہا ہے.
This is the law of karma.
یہ کرم نیم ہے.
Yeah, of course, when you're hungry, the lower niyamas are disturbed.
اب آپ بھوکے ہیں تو یہ نیم تھوڑے سے وچلت ہو جاتے ہیں.
So it's very difficult to be happy.
اس لیے ہمیں خوش ہونا مشکل ہوتا ہے اگر آپ بھوکے ہیں تو.
But when the lower niyamas are satisfied, then it's other factors that make you happy.
لیکن جب یہ نمن نیم جو ہے یہ جب سمادھان ان کا ہو جاتا ہے تو دوسرے نیم کام کرتے ہیں.
It's acting skillfully.
کشلتا سے کاریہ کرنا.
That means acting on the basis of maitri.
اس کا ارتھ یہ ہوا کہ آپ کشل کرم کرتے ہیں میتری کر کے.
If you feel maitri and you act on that basis, you feel good.
اور اگر آپ میتری پر آدھارت اگر آپ کا کرتی کرتے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے.
And you feel differently about the world around you.
اور آپ کے ارد گرد جو دنیا ہے اس کے بارے میں آپ الگ سوچتے ہیں.
Your mind is relaxed.
اور آپ کا من جو ہے وہ آرام سے رہتا.
You're not always tense looking for enemy.
ہمیشہ ہی آپ کون ہے کیسا ہے یا دشمن کی اور دیکھ رہے ایسے نہیں دیکھتے.
If you're generous.
اگر آپ دانشیل ہیں.
If you've got that attitude of openness, of generosity.
اگر آپ دان بھاؤنا کے لیے اپنے آپ کو کھلے کرتے ہیں.
If you're not always thinking میرے.
ہمیشہ ہی آپ میرا ہے ایسا نہیں سوچتے.
If you've got that sort of attitude, you're always defended.
اور اگر آپ اس طریقے سے اگر سوچتے ہیں تو ہمیشہ ہی آپ میرا یا اس کا پرتیرودھ کریں گے.
There's a famous story in the Pali Suttas.
پالی سوت میں ایک بہت اچھی کہانی ہے.
There was one bhikshu.
وہاں پہ ایک بھکشو تھے.
And this bhikshu had previously been a king.
اور وہ بھکشو جو تھے وہ پہلے راجا تھے.
And one day some of his fellow bhikshus saw him sitting under a tree.
اور ایک دن دوسرے بھکشو نے ان کو پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا.
And he said, oh, it's bliss.
Which bhikshu says this?
The one who'd been a king.
تو جو راجا تھے انہوں نے جو بعد میں بھکشو بنے انہوں نے کہا واہ یہ کتنا اچھا ہے.
And so the other monks, they went to the Buddha.
تو جو دوسرا بھکشو جو تھا وہ بدھ کے پاس گئے کچھ انہوں نے کہا.
And they said to the Buddha, look, that monk, he's just thinking of when he was a raja.
تو دیکھیے یہ جو بھکشو جو ہے یہ بھکشو کیول جب وہ راجا تھا اس کے بارے میں سوچ رہا ہے.
He's thinking, oh, palace, 500 wives.
تو راجا اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ وہ راجمال ہے اس کی کئی ساری رانیاں ہیں.
So much wealth, so much money.
بہت داسیاں بہت ساری سمپتی بہت ساری سکھ.
And so the Buddha said, okay, let's go and check.
تو بدھ نے بولا ایسا ہے ٹھیک ہے جا کے دیکھتے.
He said to this monk, well, you were saying, کیا بہت اچھا ہے. Anyway, he's saying this bliss.
وہ کہتا تھا کہ ہاں میں سب سے سکھی ہوں.
Why were you saying that?
Buddha was asking him.
Yeah.
تو بدھ نے اس بھکشو کو پوچھا کہ کیوں آپ اتنے سکھی ہیں.
Well, he said, well, formerly I was a king.
وہ کہتے ہیں کہ میں پہلے راجا تھا.
And I was in my palace.
اور میں اپنے راجمحل میں تھا.
And I had all my wealth.
اور ساری سمپتی میرے پاس تھی.
I had all my wives, all my ministers, all my servants.
تو میرے سارے داس داسیاں اور رانیاں اور منتری یہ سب لوگ تھے.
But when I slept at night, I was always thinking, is the neighboring Raja going to come and conquer me?
تو ہمیشہ ہی मैं यह सोचते रहता था क्या बाजू का जो राजा है वो आके मेरे ऊपर आक्रमण करके ये सब मुझे जीत लेगा.
He was always thinking of his insecurity.
हमेशा ही मैं मेरी असुरक्षितता के बारे में ही सोच रहा था.
No, I don't need anything.
अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है.
No, I just whatever I have, I give away.
जो भी मेरे पास था मैंने वो सब दे दिया.
And I feel completely happy.
अब मुझे पूर्ण सुख का आनंद हो रहा है.
So, yes, if we have that open, generous attitude, we feel quite happy.
तो अगर हम में अगर यह खुला दान की अगर भावना है, खुली दान की भावना है, तो हमें सुख मिलता है.
If you give something away, you get a lot of happiness from it.
अगर आप किसी चीज को देते हैं तो आप खुश होते हैं.
At Christmas time in England, it's a time when you give presents.
तो क्रिसमस का जो समय होता है इंग्लैंड में, तब हम बहुत सारी भेंट वस्तुएं देते हैं.
You give presents to all your family, all your friends.
आप सभी मित्रों को यह गिफ्ट देते हैं.
And it's a very happy time.
और ये बहुत ही अच्छा उनमें लगता है.
Not because of what you get, but because of your giving.
इसलिए नहीं कि आपने कुछ पाया है, इसलिए कि आपने कुछ दिया है.
So if you act skillfully on that generous basis, अगर, you get happiness.
अगर आप कुशलता पूर्वक कार्य करते हैं इस दान भावना से, तो आप खुश रहते हैं.
And if you're awake, if you're aware, you get so much joy from life.
लेकिन अगर आप सजग है, जागरूक है, तो आप उससे भी बहुत सुख लेते हैं.
So this is skillful karma.
तो यह कुशल कर्म है.
And of course, the opposite, unskillful action leads to unhappiness.
और उसके विरुद्ध है कि जो अकुशल कर्म है वह आपको दुख देते हैं, पीड़ाएं देते हैं.
Very simple. These are the laws that govern the first stage of the higher evolution.
तो यह बहुत ही सीधी सादी बात है कि उच्च उत्क्रांति की पहली बुनियाद कर्म है.
If you act skillfully, you feel happy.
अगर आप कुशलता से काम करते हैं तो आप सुखी होते हैं.
If you act skillfully, you feel in closer communication with other people.
अगर आप कुशल पूर्वक कार्य करते हैं तो आप औरों से करीब महसूस करते हैं.
You'll have more friends, you'll have deeper friendship.
आपके बहुत सारे मित्र होते हैं, आपकी गहरी मित्रता का अनुभव आप लेते हैं.
You'll enjoy the life around you.
आपके इर्द गिर्द जो विश्व होता है, दुनिया होती है, उसका आप आनंद लेते हैं.
When you go into the jungle, you'll feel it's full of life and you'll feel sympathy with that life.
और आप जब जंगल में जाते हैं तो उस जंगल के साथ आप सहानुभूति पूर्वक ऐसे आपके भाव होते हैं, वहां जीवन महसूस आप करते हैं.
You'll enjoy beauty.
आप सुंदरता को अनुभव करते हैं.
You know, in the evenings when the sun goes down, you get a beautiful sunset.
शाम को आप देखिए कितना सुंदर सूर्यास्त यहाँ होता है.
Well, the more skillfully you've been acting, the more you can enjoy that beauty.
तो जितने कुशलता से आप कार्य करेंगे उतना ही आप उस सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं.
If you're just busy with self, 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 you can't enjoy.
अगर आप मैं इससे आप भरे रहेंगे तो आप कभी भी खुश नहीं हो सकते.
You can hear a simple poem.
एक छोटी सी कविता आपको सुख दे सकती है.
You can hear a few lines of Ghalib.
आप गालिब की कुछ लाइनें सुन सकते हैं.
Maitreevir Nagarjuna has been singing Ghalib to us.
हमारे लिए मैत्रीवीर नागार्जुन गालिब को गा रहे थे.
And you feel a deep, deep satisfaction and pleasure when you hear it.
और अब जब आप वो सुनते हैं तो आपको एक सुख मिलता है, एक समाधान मिलता है.
That capacity for beauty comes with skillful karma.
तो वह सुंदरता को देखने की जो क्षमता है वह आपके कुशल कर्मों से आती है.
As you act skillfully, you can understand the world better.
और जब आप अच्छाई से कुशल पूर्वक कार्य करते हैं तो आप दुनिया को बहुत अच्छा समझते हैं.
You feel more in tune with things, you understand them better.
और चीजों के साथ आपका सुसंवाद होता है, उनको आप गहराई से समझते हैं.
So, skillful action evolves your consciousness.
तो कुशल कर्म ही आपके चेतना की उत्क्रांति करते हैं.
Unskillful action devolves your consciousness.
तो जो अकुशल कर्म है वह पतन करते हैं आपके उत्क्रांति का.
You can see sometimes people almost become like animals again.
आप अक्सर ऐसा कहते हैं कि ये इंसान जानवरों जैसे है.
I remember this very clearly from my own college days.
मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे कॉलेज के दिनों से.
I had some friends there who started taking drugs.
कुछ मित्र मेरे थे जो गांजा या ऐसे नशे के आदि थे.
Well, first of all, they got a bit of pleasure from the drugs, yes.
अब उन नशे से उनको थोड़ा सा सुख मिलता था.
But gradually they got into worse and worse mental states.
लेकिन धीरे धीरे उनका मन पतन की ओर चला गया.
Sometimes it seemed as if they were just sitting in the midst of a black cloud.
कभी कभी ऐसा महसूस होता था कि मान लो वो काले घने बादलों में बैठे हुए.
And two or three of those friends are now in mental hospitals, some are dead.
उसमें से मेरे दो तीन दोस्त लोग जो है वो पागलखाने में है और उसमें से दो तीन दोस्त लोग मर गए.
Because of that unskillful karma.
क्योंकि वह अकुशल कर्मों से उनकी वह स्थिति हुई.
You make for yourself a worse experience.
आप अपने आप को सबसे घृणित अनुभव आप तब वहां लेते हैं.
You harm others.
आप औरों को हिंसाएं देते हैं.
But you harm yourself.
लेकिन आप अपने आप की भी हिंसा करते हैं.
This is the law of karma.
यह कर्म नियम है.
And this is probably the most important thing for you to know.
और यह सबसे महत्वपूर्ण शायद बात है आपको जानने के लिए.
Yes, if you're an engineer, you need to know how the law of thermodynamics works, otherwise your bridge will fall down.
तो आप अगर इंजीनियर है तो आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के नियम जानना होता है, नहीं तो आपका पुल नीचे गिर जाएगा.
इफ यू आर अ डॉक्टर यू नीड टू नो हाउ यू नो द बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वर्क.
और अगर आप डॉक्टर है तो आपको जीवशास्त्र की जानकारी चाहिए.
इफ यू आर अ साइकियाट्रिस्ट यू नीड टू नो दैट द मैकेनिज्म्स ऑफ द माइंड.
और आप मनोवैज्ञानिक है तो आपको मन के नियम या उसे वो पता चाहिए.
इफ यू आर अ फिलोसोफर यू डोंट नीड टू नो एनीथिंग.
अगर आप फिलासफर है तो आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है.
Yes, the one thing we do need to know is what will give us a better, happier mind.
तो हमें सबसे महत्वपूर्ण जानना यह है कि कौन सी चीजें हमें सबसे खुश या सुखी मन देगी.
And nobody tells us that.
और यह हमें कोई नहीं बताता.
But this is what the Buddha told us.
लेकिन यह हमें बुद्ध ने बताया.
The mind obeys laws.
मन नियमों का पालन करता है.
Just as a stone obeys the law of gravity.
जैसे कि पत्थर गुरुत्वाकर्षण शक्ति से नीचे गिरता है.
You can prove this in your own experience.
और आप अपने अनुभव में इसे साबित भी कर सकते हैं.
Come and do meditation.
आइए और आप ध्यान कीजिए.
Make a proper effort.
आप थोड़े से प्रयास कीजिए.
See what your mind is like afterwards.
और आप देखिए उसके बाद आपका मन कैसे प्रतीत होता है.
If you want to make a complete experiment, go and shout at a friend.
और आपको अगर पूरा अनुभव इसका लेना है तो आप किसी दोस्त के पास जाइए, उससे झगड़ा कीजिए.
See what sort of mind that gives you.
कैसा आपका मन तब लगता है आप देखिए.
See the way in which your actions affect your own mind.
देखिए कि आपकी कृति आपका कर्म आपके मन के ऊपर कैसा परिणाम करता है.
Surely, brothers and sisters, this is the most important study for us.
भाई और बहनों, यह सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास हमारे लिए है.
Armed with this science, you can build yourself a better mind.
ऐसे विज्ञान के ऊपर आप आपका बहुत ही अच्छा मन उसकी निर्मित कर सकते हैं.
And if you can build yourself a better mind, you can help other people to have a better mind.
और अगर आप अपना मन अगर अच्छा निर्माण करते हैं तो आप औरों का मन भी अच्छा कर सकते हैं.
This is the work Baba Sahib was involved.
यही प्रक्रिया है बाबा साहब के साथ.
What was his basic message?
उनका मूलभूत या बुनियादी संदेश क्या है?
His basic message was, you are responsible.
बाबा साहब कहते हैं कि आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं.
डोंट वेट फॉर मिस्टर गांधी टू लिबरेट यू.
इसकी राह मत देखिए कि गांधी आएंगे और आपकी मुक्तता करेंगे.
डोंट वेट फॉर गॉड टू लिबरेट यू.
ईश्वर की राह मत देखिए, वो आएंगे और आपको मुक्त करेंगे.
आफ्टर ऑल यू वेटेड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स.
ऐसा करते करते आपने हजारों साल राह भी देखी.
Liberate yourselves.
अपने आप को मुक्त कीजिए.
Take responsibility for your own lives.
आप अपनी स्वयं की जिम्मेदारी लीजिए.
This is the first message of karma.
यह कर्म का पहला संदेश है.
It's self consciousness.
यह आपकी स्वचेतन जागृति है.
Self responsibility.
आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है.
Our own future is in our hands.
हमारा भविष्य हमारे हाथ में है.
I was born a Hindu because of Uttu Bija and Mano Niyama.
और मैं हिंदू करके पैदा हुआ क्योंकि मैं उत्तु बीज और मनो नियमों का पालन कर रहा था.
But I will not die a Hindu because of karma niyama.
क्योंकि मैं हिंदू करके मरूंगा नहीं क्योंकि यह कर्म नियम.
So We've got our clue as to the laws that govern the higher evolution.
तो हमने ऐसे कुछ नियमों को खोजने की कोशिश की जो उच्च उत्क्रांति की ओर बढ़ते हैं.
And what we can create in ourselves is something almost unimaginable.
तो हम में जो कुछ भी इससे निर्माण होगा उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते.
We can make ourselves a mind that is was really wonderful.
ऐसा हम मन निर्माण कर सकते हैं जो बेहद अप्रतिम हो.
Look at Baba Sahib.
अब आप बाबा साहब को देखिए.
He wasn't just an accident.
यह कोई क्या कह सकते अनहोनी या दुर्घटना नहीं थी.
It wasn't just chemicals getting mixed up and by mistake you get a Baba Sahib.
ऐसे आप कुछ केमिकल नहीं मिलाते और गलती से आपको बाबा साहब मिल जाते हैं.
बाबा साहब मेड हिमसेल्फ.
बाबा साहब ने अपने आप को बनाया.
ही वाज हिज ओन वर्क ऑफ आर्ट.
वह अपने आप में कला की एक अभिव्यक्ति थी.
ही बिकेम दैट लायन ऑफ अ मैन.
वह एक क्या कहते हैं सिंह पुरुष बने.
बिकॉज ऑफ कर्म.
कर्मों के कारण.
ही वर्क्ड ऑन हिमसेल्फ.
वह उन्होंने अपने आप के ऊपर कठिन परिश्रम किए.
He thought deeply about himself, about his life.
अपने स्वयं के जीवन के बारे में उन्होंने गहराई से सोचा.
He took responsibility.
उन्होंने अपनी स्वयं की जिम्मेदारी ली.
He lived ethically.
वह नैतिक जीवन जिए.
He lived according to Shila.
वह शीलों के साथ जिए.
He followed the precepts.
और उन्होंने शीलों का पालन किया.
You know, Baba Sahib, he was a great politician, of course.
आपको पता है बाबा साहब बहुत ही महान राजनीतिज्ञ थे.
What happens to every politician in India?
क्या होता है हर राजनेता के साथ भारत में?
They're all accused of some misconduct.
हर राजनेता कोई ना कोई दुराचार से कलंकित है.
It's either money or the other thing.
या तो यह पैसा हो या और कोई उनके कार्य.
Or both.
या दोनों.
But nobody even accused Baba Sahib of that.
लेकिन उनमें से एक भी आदमी बाबा साहब के ऊपर यह दोषारोपण नहीं कर सकता.
You couldn't accuse him. He was so obviously a deeply moral man.
आप बिल्कुल यह कर भी नहीं सकते क्योंकि वह गहराई से अपने नैतिकता का पालन कर रहे थे.
That's karma.
वह कर्म है.
The precepts are simply defining skillful karma.
तो शील जो है यह कुशल कर्मों की जड़न घड़न करते हैं.
The precepts are simply a guide to the science of happiness.
शील ही अपने आप में सुख के नियम के मार्गदर्शक है.
If you don't harm other living beings, you will make a better mind for yourself.
अगर आप किसी सजीव को हिंसा नहीं करते तो आप अच्छा मन निर्माण करते हैं.
If you don't steal, you'll make a better mind for yourself.
अगर आप किसी चीज को चुराते नहीं है तो आपका मन अच्छा होता है.
If you don't commit sexual misconduct, you'll make a better mind for yourself.
आप अगर लैंगिक दुराचार नहीं करते हैं तो आपका मन अच्छा रहता है.
If you don't lie, you'll make a better mind for yourself.
अगर आप झूठ नहीं बोलते तो आपका मन अच्छा होता है.
If you don't indulge in drink and drugs, you'll make a better mind for yourself.
और अगर आप नशे की चीजें लेते नहीं है तो आपका मन अच्छा होता है.
These are not rules.
अब ये नियम नहीं है.
It's rules in the legal sense.
Yeah, नियम नहीं है.
Okay. Yeah. All right. But it's just like the law of gravity isn't a legal rule.
हाँ, तो ऐसे जो हम कानूनी नियम कहते हैं वैसा गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं है.
Nobody says stones will fall to the ground.
ऐसा कोई भी कहता नहीं है कि पत्थर अभी तुझे जमीन पे गिरना है.
It's just the way things are.
ऐसे ही यह होता है.
It's the same with the precepts.
यही नियम शीलों के साथ है.
It's if you behave like this, then there will be a good result for you and a good result for others.
अगर आप इस प्रकार से कार्य करते हैं तो आप अच्छे होंगे और आप औरों को अच्छा करेंगे.
And Baba Sahib lived that kind of life.
और बाबा साहब ऐसा जीवन जिए.
That's why he became the man that he was.
इसलिए वह ऐसे पुरुष बने जो वो चाहते थे.
What he did, you can do.
जो उन्होंने किया आप भी कर सकते.
We can do.
हम सब लोग कर सकते.
If we take responsibility for ourselves, if we live skillfully, we will make a better and better mind for ourselves.
अगर हम कुशलतापूर्वक रहते हैं और अच्छाई से अगर रहते हैं तो हम अच्छा मन अपना बना सकते हैं.
This is science.
और यह विज्ञान है.
It's the way things are.
ऐसे ही चीजें हैं.
You can see it.
आप इसे देख सकते हैं.
You don't have to believe it, you can see it.
आप इसके ऊपर आपको ऐसा ही अंधविश्वास करने की जरूरत नहीं. आप इसे देख सकते हैं.
You can test it in your experience.
आप इसका स्वाद ले सकते हैं अपने अनुभवों में.
So this is the first stage of the higher evolution.
तो यह पहला चरण है उच्च उत्क्रांति का.
It takes us a very long way indeed.
यह अब इससे बहुत आगे जाता है.
But the Buddha is even further.
लेकिन बुद्ध उनसे भी आगे है.
How do Buddhas arise?
कैसे बुद्ध की उत्पत्ति होती है?
What is the science of Buddhahood?
संबोधि का विज्ञान क्या है?
What is the science of infinity?
वो अनंतता का विज्ञान क्या है?
Tomorrow we will find out.
कल हम इसे खोजेंगे.
नमो बुद्धाय. जय भीम.
Thank you.